karma-jambudhi-yukta-hi palam-tyaktva-manishina janma-bhandhava-nirmukta padam-gacchantya-namayam. Is there requirement for translation today? Engaging in devotional service to the Lord. Great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. And attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. Vrishabhanu Prabhu, you translate?
Yes, Prabhu.
We will go sentence. It's material world. There are three types of activities.
इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के क्रियाएं होती हैं.
One is called karma.
एक को कर्म कहा जाता है.
Karma means acting according to the rules and regulations of the scriptures.
कर्म का मतलब है नियमों के अनुसार चलना.
By acting in a pious way, we get good karmic results.
धार्मिक विचारों के अनुसार कर्म करने से हमको अच्छा पुण्य मिल सकता है.
I will give a very simple lecture. If you act good, you get good results.
अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलता है.
That is called karma.
इसको कर्म कहा जाता है.
The second is called vikarma.
दूसरे को विकर्म कहा जाता है.
This means when we act sinfully.
इसका मतलब है अगर आप पाप की वृत्ति से काम करते हैं.
When we cause harm to others.
और आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं.
The law of nature is that pain will come to us.
तो भगवान निश्चित रूप से आपको भी उसका दुख देते हैं.
And the other type of activity is called akarma.
और दूसरे प्रकार के कामों को अकर्म कहा जाता है.
That is means those activities which are beyond the reactions of the laws of nature.
इसका मतलब ये जो हैं वो प्रकृति के विपरीत जो कर्म होते हैं वो होते हैं.
When we act in devotion to the Supreme Lord, there is no material reaction.
जब हम भक्ति में भगवान पुरुषोत्तम के सेवा में काम करते हैं तो उसका कोई हम पर वो फल नहीं होता है.
Because such activities in bhakti are the natural activities of the soul.
क्योंकि ये जो भक्ति के जो हम कर्तव्य काम करते हैं वो हमारे लिए स्वाभाविक होते हैं.
The soul is spiritual. It is eternal, full of knowledge and full of bliss.
आत्मा जो है आनंद से भरपूर है, परिपूर्ण है और वो शाश्वत है.
But this material body is asat, achit and nirananda. It is temporary, full of ignorance and subjected to so many sufferings.
लेकिन ये भौतिक शरीर जो है उसके विपरीत है. इसमें अशांति है, आनंद का अभाव है और इसमें बहुत सारे हमारे ऊपर उसका असर हो सकता है.
So karma and vikarma activities are meant for the body.
Karma aur vikarma ke jo hum kaam karte hain wo sharir ke liye hai.
We rejoice when we receive something very pleasant and we suffer when we receive something unpleasant.
Jab kuch acha hota hai to hum anandit hote hain, jab acha nahi hota hai to humko bada dukh hota hai, kasht hota hai.
But these dualities are inseparable from one another.
लेकिन ये दोनों तरफ के विपरीत जो हैं अलग नहीं कर सकते हैं, वो साथ में रहते हैं.
And therefore people can find no real happiness through these bodies.
इसलिए इससे किसी को आनंद नहीं मिल सकता है.
Within the body is the soul, who is the person that gives consciousness to this body.
शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी के वजह से हमें चेतना मिलती है.
The soul is seeking everlasting happiness.
आत्मा निरंतर आनंद के लिए कष्ट करता है.
That happiness naturally comes about when we are in our natural condition of serving God.
ये आनंद जब हम स्वाभाविक तरीके से भगवान की सेवा करते हैं तब हमको आनंद मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है.
Service to God is the service which is our real natural condition as spirit souls.
भगवान पुरुषोत्तम की सेवा जो है वो हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है.
And the whole civilization has been arranged by Lord Krishna so that everyone can develop their natural spiritual qualities.
और ये जो पूरा जो भौतिक जो बनाया गया है वो भगवान कृष्ण इसलिए बनाया गया है कि हम हमारी भक्ति में हम बढ़ सकें.
In fact, every stage of our life is meant only for that purpose.
हमारे बचपन से हम जब बूढ़े होते हैं तो हर एक स्टेज पे हमें इसी के लिए हमको ये दिया गया है.
Within the Vedas and within the culture and tradition of this great land of India, at various important stages of our life, there are samskaras to be performed.
हमारे मतलब जिंदगी के अलग अलग स्तरों पे हमें कुछ ना कुछ कर्तव्य करना रहता है.
At every major transition, a human being is meant to perform these samskaras.
और ये हर एक बार जब हम स्तर में बदले होते हैं तो हमें ये संस्कार करने की जरूरत रहती है.
He's doing good? Yes?
Everyone? I don't think so, Maharaj.
But everyone else thinks so. You're not supposed to think so. The beginning, at the time of conception, the Vedas teach us. That is the time when the presence of the spirit soul enters into the womb of the mother.
जब आदि 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 स्थिति में हमें वेद जो है हमको बतलाते हैं कि तभी सृष्टि में आत्मा की क्या बोलते प्रवेश हो जाता है.
In the world today, in the governments, amongst politicians and social welfare people, they are having so many debates and arguments of when life actually begins.
आज के जगत में और सरकार में हर तरह यही चर्चा होता है कि कब मतलब सृष्टि हुई और कब ये जीवन की शुरुआत हो गई.
But the Vedas tell us that at the very moment of conception, the life begins to develop within the womb of the mother.
लेकिन हमें वेद शास्त्र बताते हैं कि पहले से ही जब हमारा मतलब जन्म होता है तभी से इसका उसकी शुरुआत हो जाती है.
And therefore the Garbhadan samskar is meant that to create an atmosphere where both the husband and the wife are in complete absorption in Krishna, in God, at the time of conception.
गर्भधान संस्कार का मतलब होता है कि दोनों पति पत्नी श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति में मग्न हो.
And that will attract a very saintly personality to enter into the womb of the mother.
इससे एक अच्छे आत्मा का प्रवेश हो जा सकता है.
If our consciousness is very materially trying to enjoy, then we will attract a very degraded soul into the womb of the mother.
अगर हमें भौतिक सुख की इच्छा हो तो जो आत्मा ऐसे दंपति के मतलब दंपति के इसमें संभोग से उत्पन्न होगा उसके उसके जो गुण होंगे वो बिल्कुल भौतिक स्तर के होंगे.
Of course, the soul can never be degraded, but the soul is covered by various types of karma from previous births, and therefore is in a degraded situation.
वैसे आत्मा नीचे नहीं गिरती, लेकिन आत्मा के ऊपर जो आवरण होता है उसके वजह से हमें लगता है कि आत्मा का कुछ पतन हो गया है.
And at the time of birth, there is another samskara.
जन्म के वक्त और एक संस्कार भी होता है.
Cutting the umbilical cord between the mother and the child.
माँ और बच्चे को.
I don't know what the word is.
माँ और बच्चे को जो जुड़ा हुआ जो umbilical वो I don't know what exactly. The word for umbilical cord.
I don't think anyone.
पर माँ और बच्चे को मालूम होता है. माँ और बच्चे के बीच में जो जो कनेक्शन रहता है जब बच्चे का जन्म होता है वो.
You're doing better than me. No one laughed when I spoke. Translate. So and then when the child first takes grains beginning to eat outside of the milk from mother, that is another samskara.
और जब बच्चा अन्नप्राशन करता है मतलब दूध के व्यतिरिक्त अन्नप्राशन करता है वो भी एक दूसरे तरह का संस्कार है.
And when the child first begins education and begins to write with pencil or chalk, there is another samskara.
और जब बच्चा कुछ लिखना शुरू कर देता है और वो दूसरे तरीके का संस्कार होता है.
And in some places there is big festival for each of these samskaras.
और थोड़ी जगह बहुत बड़े उत्सव होते हैं ये संस्कार मनाने के लिए.
Because it is a major step forward in a child's life.
क्योंकि ये बच्चे के जीवन में एक आगे आने की प्रति है.
And it is an entrance into another realm of serving God.
और भगवान के सेवा में जाने के लिए एक अलग तरीके का रास्ता होता है.
The samskaras are meant to invoke the blessings and the mercy of the Lord on that person in entering into another phase of devotion.
संस्कार करने की प्रथा इसलिए होती है कि इससे वो बच्चे के ऊपर उसके से भगवान की सेवा में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिल जाए.
Of course, these days, because it is Kali Yuga, these sacred samskars which are meant to impress in a person's life the necessity of devotion and sacrifice to God and service to God, they have become just social events.
Lekin aajkal ye jo samskar hai unko wo jiske liye wo banaye gaye the waisa nahi hota hai, unko alag disha mil rahi hai.
And this is very unfortunate.
Ye bahut buri baat hai.
They are times of celebration, but we celebrate for a very serious purpose.
कभी कभी ये उत्सव मनाते हैं वो एक अच्छे 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 पर्पज के लिए होता है.
We are celebrating that this child is getting the mercy and the blessings of so many Brahmins and Vaishnavas and saintly persons on this day to enter into the next phase of one's life.
ये संस्कार इसलिए होते हैं कि एक बच्चे के ऊपर वैष्णवों के और भगवान की कृपा हो और उसकी प्रगति हो जाए.
And then there is the samskara of marriage.
और शादी का भी एक संस्कार होता है.
Because marriage is a very sacred vow that is taken between a man and a woman.
शादी भी एक बहुत अच्छा संस्कार है जिसमें दो व्यक्ति साथ में आते हैं और भगवान की सेवा में लगने की इच्छा रखते हैं.
It is a vow taken before God for the purpose of service to God.
ये भगवान के सामने भगवान की सेवा करने के लिए ही है.
बिकॉज मैन एंड वुमन आर नॉट मेंट टू एंजॉय वन अनदर.
ये भौतिक सुख के लिए नहीं होता है.
एनिमल सिविलाइजेशन दे आर मेंट टू एंजॉय वन अनदर.
ये तो प्राणी जो हैं, जंगल के प्राणी हैं, वो खुद भौतिक सुख के लिए साथ में आते हैं.
Therefore, animals have no samskaras.
इसलिए प्राणियों के लिए कोई संस्कार नहीं होते.
Because what they do is not a sacrifice of devotion to God, it is simply for enjoyment.
क्योंकि वो खुद के आनंद के लिए करते हैं, उसमें भगवान की सेवा की अपेक्षा नहीं रहती.
There is no marriage between two rats.
दो चूहों में शादी नहीं होती.
Correct? There is no marriage between two dogs or two hogs.
दो कुत्तों में भी शादी नहीं होती.
Or two mosquitoes. Because their purpose is simply that there's an urge and they enjoy.
क्योंकि उनकी एक ही इच्छा होती है कि बस किसी को काट लें और उसमें कुछ सुख की प्राप्ति हो.
And they find a beautiful partner to enjoy with.
और उनके साथ एक साथी ढूंढते हैं जिसके साथ वो सुख का उपभोग करें.
And then they have children.
उनके बाद बच्चे होते हैं.
And then they raise their children to enjoy.
और उनके बच्चे भी जब उनको बड़ा करते हैं इसीलिए कि वो भौतिक सुख प्राप्त करें.
And then when their children get old enough, they also find partner and enjoy.
उनके बच्चे जब बड़े होते हैं वो भी वही मार्ग का अनुसरण करते हैं.
And in this way, the population of rats, dogs, hogs and mosquitoes increases day by day throughout the world.
इस तरह चूहे कुत्ते इत्यादि इनका जो पॉपुलेशन है बढ़ता ही रहता है.
So human population is also increasing day by day in the same way.
ठीक इसी तरह मानवों का भी पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ता ही जा रहा है.
Because people do not understand the meaning of the marriage samskara.
क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि लग्न का अच्छा संस्कार क्या होता है.
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन.
मनुष्य का जन्म जो है आत्म साक्षात्कार के लिए है.
इट इज नॉट सिंपली मेंट फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट.
वो भौतिक सुख के शारीरिक सुख के लिए नहीं है.
The marriage samskara is a sacred ceremony wherein the man and the woman come together to make a vow that they are not coming to enjoy one another, but they are coming to be enjoyed by God together.
जब एक आदमी और स्त्री साथ में आते हैं तो ये पुण्य का संस्कार, ये संस्कार अच्छा संस्कार है. वो आप भौतिक सुख के लिए नहीं होता है, शारीरिक सुख के लिए नहीं होता है, बल्कि भगवान की सेवा के लिए ही होता है.
It is said that when two people become married, they become one person.
कहा जाता है कि दो लोग जब शादी करते हैं तो एक हो जाते हैं.
That means they are completely united in the highest purpose of life, which is devotion to God.
इसका मतलब यह है कि वो दोनों एक इसलिए होते हैं कि उनको परम पूज्य भगवान की सेवा करनी है.
In every tradition throughout the world, religious tradition, this is the original intention of marriage.
शादी का असली मतलब यही होता है कि भगवान की सेवा करें.
Whether it is held in the church or in the mosque or in the mandir or in the synagogue, it is meant to invoke the blessings of the Lord upon these two, that they can enter into the loving service of the Lord together.
चाहे ये शादी कहीं भी मनाई गई हो, चाहे मॉस्क में या चर्च में या मंदिर में, इसका ध्येय एक ही होता है कि ये दोनों जो साथ में आते हैं वो भगवान की सेवा में लगे रहें और उनके ऊपर भगवान की कृपा हो.
And when the atmosphere becomes surcharged with this devotional spirit, marriage becomes a beautiful offering to Lord Krishna.
जब ये जब जो वातावरण है वो भक्ति का वातावरण रहता है तो इसमें असली शादी का जो है पर्पज है वो मिल जाता है.
It is completely favorable for spiritual advancement.
वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बिल्कुल अच्छा रहता है.
When two people follow these principles together nicely, there is no need to be brahmachari or sadhu or sannyas. They are already sadhus in the grihastha ashram.
जब दंपति ये अच्छी तरह से इस संस्कार का पालन करते हैं तो सन्यास धर्म और अलग कुछ आश्रम उसकी उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है.
And they can set the highest standard for others to follow.
और इस तरीके से वो एक परम उच्च भक्ति का आदर्श लोगों के सामने रख सकते हैं.
So this is what marriage means.
यही शादी का असली मतलब है.
We call for qualified Brahmins and qualified Vaishnavas to come to chant the names of the Lord, to bestow their blessings, so that the married couple could actually receive the sanction and the mercy of the Lord coming through these people to make their vows nicely and live a devotional life in the service of the Lord.
Vaishnavon ke, bhaktajanon ke, aur brahmanon ke इन इस दंपति के ऊपर आशीर्वाद हो जिसके वजह से वो भगवान की पूर्ण तरह से अच्छी तरह से सेवा करें यह तो असली ध्येय रहता है.
And there is no greater way to invoke the mercy of the Lord than inviting devotees to come together to chant the holy names.
और सब भक्तों को एक एकत्र आके भगवान का नाम लेना है इससे अच्छा तरीका दूसरा कोई नहीं है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
And to give prasad to all the assembled devotees.
और जो भक्तजन साथ में आते हैं उनको प्रसाद देना भी अच्छा रहता है.
And through this wonderful process.
और इस मार्ग से
we can rejuvenate and awaken the real natural qualities of our eternal soul.
इस तरीके से हम हमारे अंदर जो कृष्ण के प्रति भावना रहती है उसको हम जागृत कर सकते हैं.
So today we are very happy to be with all of you.
आज महाराज को बहुत आनंद हो रहा है कि वो आप सबके साथ हैं.
Especially Vrishabhanu Prabhu. He's my editor. Because where most of the world is ritualistically having these big, big marriages, with very little conception of the true spirit of devotion to God, you have called so many devotees to come and make this occasion supremely auspicious through the congregational chanting of the Lord's name and discussing the highest truths of Krishna's teachings.
आज के जगत में पूरे शादियां जो मनाई जाती हैं वो पूरे कर्मांग के ऊपर निर्भरित हैं और ऐसे वातावरण में आप सब लोगों ने इधर भक्तों को बुलाया है और भगवान की सेवा में लगाया है इससे अच्छा क्या हो सकता है.
दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल दैट वी आर प्रेइंग दैट द वर्ल्ड मे फॉलो.
ये बहुत अद्भुत और अच्छा तरीका है जिससे पूरे जगत को फायदा हो सकता है.
दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लव.
यही प्रेम का सच्चा सिद्धांत है.
टू ब्रिंग ए पर्सन क्लोजर टू कृष्ण.
तो लोगों को भगवान के प्रति लाने का.
To help to invoke the grace of God and His devotees upon our loved ones.
भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर लाने के लिए यही एक अच्छा सुमार्ग है.
There is a beautiful story. Which story should I tell? Which story would you like to tell?
The one that I can render into Hindi.
Huh? Which? Someone give request. Huh? That's a long story. Story two. Prominently assisting me in this program. Actually, this is the meaning of marriage. Kalavati and Vrishabhanu Prabhu. They are the topmost examples. They have come together to bestow the most wonderful benediction upon all humanity by their exemplary devotional activities. Haribol, would you like to translate this? So Kalavati Mataji wants me to tell about Ramanujacharya bestowing mercy upon everyone. So Ramanujacharya, one of the great, great Vaishnavas, who was the founder of the Sri Sampradaya in the modern age.
Ramanujacharya ek bahut bade sant ho gaye hain jo Sri Sampradaya ke adi sant the.
And he was sent to a very, very great saintly person in a village which is now present in Tamil Nadu.
Unko ek gaon mein jo abhi Tamil Nadu mein hai wahan ek bahut bade sant ke paas bheja gaya.
And he was asked to take initiation into a very sacred mantra.
Unko unse diksha lene ke liye kaha gaya ek param mantra dekar.
But when he went, the spiritual master, he told Ramanujacharya that this mantra is very, very pure and it is very secret.
जब वो उनके गुरु महाराज के पास गए तब उनको कहा गया ये जो मंत्र है वो बहुत गोपनीय है और वो बहुत शुद्ध है इसलिए दूसरे किसी को नहीं कहा जा सकता.
And he was thinking there is no one on earth qualified to receive this mantra.
और वो कह रहे थे कि ऐसे कोई नहीं है जगत में जिसमें ये अर्हता है कि वो ये मंत्र ले सकें.
So he told Ramanujacharya that he would not give him mantra.
उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा कि ये मंत्र नहीं दे सकते.
So Ramanujacharya was very sad.
रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ.
So he pleaded with him.
तो उन्होंने उनसे बार-बार अर्चना की.
So he said not now.
उन्होंने कहा अब नहीं.
So Ramanujacharya, very depressed, he returned to his village. And again and again and again he came back and asked this great soul to give him the mantra. But it again and again and again this great soul said not now.
Ramanujacharya ko bahut bada dukh hua lekin wo bar bar unke wo guru maharaj ke paas jate the aur unse prarthna karte ki wo unhe maha mantra de lekin wo guru maharaj phir se kehte the nahi ab nahi.
So one day Ramanujacharya was at a festival and this great soul also came to the festival.
Ek din Ramanujacharya ek utsav mein the jab ye dusre punyatma wo bhi wahan aaye.
And there was a procession with the murti of Lord Narayan.
Aur wahan bhagwan Narayan ka utsav murti leke ek yatra ho rahi thi.
And at that time the pujari, he spoke very loudly. He said to this great spiritual master, he said, the Lord is speaking through me that you should give Ramanuja this mantra.
उस वक्त वो जो पुजारी जो थे वहाँ के तो उन्होंने बहुत ऊंची आवाज से कहा कि मुझे भगवान ने कहा है कि आप मंत्र दीक्षा रामानुजाचार्य को दें.
Because he is a completely pure devotee of the Lord and he is most qualified to receive it.
क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्हें पूरी योग्यता है कि वो मंत्र उनको मिले.
But still he was hesitant.
फिर भी वो जो गुरु महाराज थे वो मंत्र देने के बारे में हिचकिचा रहे थे.
So devotees told him that Ramanuja is literally weeping and crying in despondency because he feels that he is so offensive and so low and degraded that he is not worthy of taking this mantra.
तो उनको उनके शिष्यों ने कहा कि रामानुजाचार्य को इतना दुख हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि उनमें बिल्कुल कोई योग्यता नहीं है, वो इतने नीचे गिरे हुए हैं कि उनमें कोई योग्यता नहीं है कि उनको वो महामंत्र गुरु महाराज से मिले.
So he called Ramanujacharya and he told him that this mantra is so pure and so perfect that anyone who hears it will be liberated from all the miseries of this world and attain pure devotion to Lord Narayan.
तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बुलाया और उनसे कहा कि ये मंत्र इतना शुद्ध और परिपूर्ण है कि ये जिस किसी को मिलेगा वो उसको बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और ये संसार चक्र से उसका छुटकारा होगा.
Therefore, you must never in your life ever tell anyone this mantra.
इसलिए आप इसमें अपने जिंदगी में किसी को भी ये महामंत्र के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए.
Kalavati, this is the correct story you have requested? No.
Yes, Maharaj.
Then you come back and tell me which story.
That same story.
You said Ramanujacharya giving mercy to others. Ah, that one. This and that. You are very diplomatic. So I will tell this and that. This is very intelligent story that you have given. But I should finish this one first. And so, Ramanujacharya left his guru's ashram and he went and he started seeing all the people of the town.
Ramanujacharya ne guru ka ashram choda aur wo gaon mein bahar aaye.
And he was thinking that these poor people, they are going to suffer birth and death again and again and again without devotion to Lord Narayan.
और वो रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि ये जो लोग हैं उनको पुनः पुनः जन्म और मरण के चक्र में आना पड़ेगा और उनको नारायण की कृपा कभी नहीं होगी.
So he said to all the people, he advertised throughout the town that you come to the mandir right away and bring everyone and I will give you the greatest treasure.
तो उन्होंने ये घोषणा की कि आप सब लोग जो हैं गांव के सब वो मंदिर के पास आए हैं और आपको ये महामंत्र जो है सबसे अच्छा मंत्र जो है आपको मिलेगा.
So everyone is very anxious for great treasures in this world.
सब लोगों को कुछ ना कुछ संपत्ति की जरूरत होती है.
So many people gathered and Ramanujacharya climbed to the top of the temple and he said, I will now give you the greatest of all treasures.
बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और रामानुजाचार्य जो हैं वो मंदिर के ऊपर चढ़ गए. वो कहने लगे अब मैं आपको ये जो अलौकिक धन है आपको दे दूंगा.
I will give you the mantra by which you chant, you will become free from all the sufferings of this world due to attachment to this material body and you will achieve the pure unalloyed joy of the soul in devotion to Krishna.
उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी ये ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आप जो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और आपको ऊंची स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाएगा.
Now everyone repeat after me.
अब आप सब मेरे साथ राधानाथ महाराज के.
Now Ramanujacharya.
जरा ये.
I'm quoting Ramanujacharya. He said, "Everyone, repeat after me."
Ramanujacharya ने कहा कि सब लोगों से कहा कि वो जो कह रहे थे वो उनके साथ दोहराएं.
And then very loudly he said, "Om Namo Narayanaya."
Om Namo Narayanaya.
And everyone, thousands and thousands of townspeople, were chanting at the top of their voices as Ramanujacharya was leading the kirtan. Om Namo Narayanaya.
Om Namo Narayanaya.
ओम नमो नारायणाय
ओम नमो नारायणाय
एंड देन एवरीवन वाज वेरी हैप्पी डांसिंग इन ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस
सब लोग जो हैं वो ऊंची कीर्तन करके बहुत आनंदित हुए और प्रभावित हुए और वो नृत्य और कीर्तन करने लगे
He told them that you should regularly keep this name of the Lord always in your heart.
उन्होंने कहा कि आप नियमित रूप से भगवान का जो नाम है आप उसका आराधना करिए
Ramanujacharya's guru, when he had heard the news that the secret mantra he was not allowed to tell anyone in his life, he just told everyone in the town. He became very angry.
जब रामानुजाचार्य के गुरु महाराज हुए उन्होंने जब ये सुना कि ये जो मंत्र किसी को नहीं कहना था उन्होंने सब पूरे गांव को बता दिया सब लोगों को बता दिया तो वो बहुत क्रोधित हो गए
So Ramanujacharya went to his guru's house and offered his dandavat pranam.
रामानुजाचार्य उनके गुरु महाराज के पास गए और उन्होंने उनकी दंडवत की
And the guru was, how can you even stand before me? I do not want to see your face. Because of the offense you have made by telling this mantra to others, you will go to hell.
Guru Maharaj ne kaha ki aapne ye jo mantra sab logon ke kaha hai, iske wajah se aap zarur nark mein jayenge, kyunki maine bola tha ki ye mantra kisi ko nahi kehna hai, ye gopaniya hai.
Now get out of my sight.
Ab yahan se nikal jao.
Ramanujacharya was very humble.
रामानुजाचार्य बहुत विनम्र थे
With great respect, he said to this great spiritual master that you have told me that anyone who hears this mantra will become free of all sufferings and go back to the spiritual world.
रामानुजाचार्य उनके गुरु महाराज से कहने लगे बहुत विनम्र भाव से और भक्तिभाव से कहने लगे कि आपने ही मुझे कहा था कि ये जो कोई ये मंत्र का उच्चारण करेगा वो जरूर ये जगत के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएगा
प्लीज फॉर गिव मी बट आई डू नॉट माइंड गोइंग टू हेल फॉरएवर इफ ऑल दीज पीपल कैन बी फ्री फ्रॉम सफरिंग्स एंड गो बैक टू कृष्णा
आप जरूर मुझे क्षमा कीजिए मैं खुद नरक में जा सकता हूं अगर इस तरीके से ये सब लोग जो हैं दुखी लोग हैं उनको अगर छुटकारा मिले ये भौतिक जगत से
गुरु महाराज began to weep
गुरु महाराजों की आंखों से आंसू बहने लगे
And he embraced Ramanujacharya with great love
उन्होंने रामानुजाचार्य को आलिंगन दिया और बहुत उनको आनंद हुआ
आलिंगन He said, "My dear son, you are greater than me."
उन्होंने कहा उनके शिष्य से कि आप मुझसे भी बड़े हो.
Your compassion and your love for all living beings toward others is greater than mine. Now, you are my guru and I am your disciple.
आपके हृदय में जो अन्य लोगों के लिए अनुकंपा है, इससे मैं आपका शिष्य बन गया हूं और आप मेरे गुरु हैं.
Ramanujacharya, with great humility and folded palms, he bowed down and said, "No, Guru Maharaj, whatever I am doing is only by your mercy."
Ramanujacharya ne bahut vinamra bhav se dandavat kiya aur kehne lage ki Guru Maharaj, main jo bhi kuch kar raha hu sab aapki krupa se hi hai.
Shri Harinam Sankirtan ki. In this age of Kali Yuga. हरिनाम 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 एव केवलम खलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा The only means by which we can be freed from the sufferings of this world and awaken our original spiritual devotion to God is through the congregational chanting of the holy names.
ये भौतिक ये इस संसार में भौतिक कष्टों से छुटकारा मिलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है हरि का नाम लेना
नाउ इन द सर्विस ऑफ कलावती देवी एंड वृषभानु प्रभु आई विल टेल द स्टोरी दैट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू मी टू टेल Another story about Ramanujacharya. One time there was a wonderful procession, celebration of the deity of the Lord in Sri Rangam.
एक बार एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था जिसमें श्री रंग भगवान की जो उत्सव मूर्ति निकाली गई थी.
And so many people were playing mridangas and karatals and horns and other instruments and everyone was chanting God's holy names.
बहुत लोग सैकड़ों हजारों लोग जो है मृदंग बजाते थे और करताल बजाते थे और भगवान का नाम ले रहे थे.
And the deity was decorated so beautiful with wonderful palanquin and pujaris were waving chamara fans and everyone was enjoying this wonderful festival.
बहुत भगवान की जो मूर्ति थी बहुत सुंदर तरीके से उसका श्रृंगार हुआ था और हर लोग जो हैं सब लोग जो हैं उसमें भाग ले रहे थे.
But Ramanujacharya and his disciples noticed that there was one man who was, he didn't even know the deity was there and he was right on the street.
Ramanujacharya aur unke shishyo ne dekha ki ek aisa jo ek aadmi tha wahan jisko ye bhi malum nahi tha ki wo bhagwan ki utsav murti ka bhakti ki ja rahi hai.
He was with a very very beautiful woman.
Wo ek bahut sundar stri ke sath tha.
It was a prostitute woman.
वो व्यभिचारिणी स्त्री थी.
एंड ही वॉज स्टैंडिंग ओवर हर विद एन अम्ब्रेला टू मेक श्योर द सन डज नॉट मेक हर हॉट.
और उनका ध्यान जो था वो उस स्त्री को सूरज की गर्मी ना हो इसलिए उन्होंने एक छाता उनके वो स्त्री के ऊपर पकड़ के रखा था.
एंड एज ही वॉज होल्डिंग द अम्ब्रेला ओवर हर हेड हर आईज वर फिक्स्ड ऑन हर ब्यूटिफुल आईज.
और जैसे वो छाता उन्होंने पकड़ के रखा था तो उसकी जो आंखें थी बिल्कुल वो स्त्री के ऊपर मतलब फिक्स थी.
एंड ही वुड नॉट लुक एनीवेयर एल्स.
और वो दूसरी जगह कहीं भी नहीं देख रहा था.
एंड मीनवाइल पीपल वर चैंटिंग एंड डांसिंग एंड डूइंग ऑल रिच ऑल नाइस पूजास एंड ही वाज राइट इन द मिडल ऑफ इट जस्ट लुकिंग एट दिस लेडी एंड होल्डिंग अम्ब्रेला वेरी केयरफुली सो नो सन विल डिस्टर्ब हर.
जब ये भगवान का कीर्तन हो रहा था उत्सव मना रहे थे सब भक्त उसमें थे तब ये जो आदमी था उसका पूरा जो मतलब अटेंशन था वो स्त्री के ऊपर था.
सो टू बिहेव लाइक दिस इन अ पब्लिक प्लेस इज वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन.
ऐसे इस तरीके से बर्ताव करना बहुत बुरी बात है. एम्बेरसिंग इट
बट ही वॉज नॉट एम्बेरस्ड.
उसको इसका कोई बुरा नहीं लग रहा था.
सो रामानुजा वाज थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट पर्सन इज दिस एवरीवन्स लुकिंग एट हिम गोइंग लाइक दिस.
रामानुजाचार्य सोच रहे थे कि ये कैसा दुर्दैवी आदमी है कि सब लोग उसके पास उसके तरफ देख रहे हैं और वो छाता पकड़ के उसको ले जा रहा है.
सो रामानुजा टोल्ड वन ऑफ हिज ब्रह्मचारीज that call this man over here to talk to me.
Ramanujacharya unke shishya se bole ki us aadmi ko yahan bulao usse main baat karna chahta hu.
So somehow or other he got his attention. Come Ramanujacharya, the great acharya of Sri Rangam wants to talk to you.
Unhone kisi tarah se us aadmi ke jo drushti hai unke upar giri unhone bola ki रामानुजाचार्य जो हैं वो श्रीरंगम मंदिर के वो आपसे बात करना चाहते हैं आप उधर आइए.
सो ही केम टू रामानुजम एंड रामानुजा आस्क्ड हिम व्हाई इन द मिडल ऑफ दिस वंडरफुल प्रोसेशन विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड यू आर जस्ट लुकिंग एट दिस लेडी.
तो रामानुजाचार्य ने उनसे उस आदमी से पूछा कि इतना बड़ा उत्सव हो रहा है और भगवान की मूर्ति उत्सव में ले जा रही है तो आप ये सब छोड़ के उस स्त्री के पास क्यों देख रहे हो.
He said, because her eyes are lotus eyes and they are so beautiful. I have never seen anything in this entire world that can compare to her lotus eyes.
Us aadmi ne kaha ki wo jo stri hai itni kamal nayani itni sundar hai ki maine pure jagat mein itni sundar aankhe aur itni sundar stri ko nahi dekha.
I cannot take my attention or attraction away from those eyes.
मेरी आंखें बिल्कुल उसकी तरफ है मैं मेरी दृष्टि दूसरी ओर नहीं ले जा सकता.
They have captured my heart, my mind and my senses.
उसने पूरा मेरा मन और हृदय जो है जीत लिया है.
And Ramanujacharya said, if I show you something more beautiful than her eyes, will you look at them?
रामानुजाचार्य ने कहा अगर मैं आपको उस स्त्री के आंखों से भी सुंदर कुछ आपको उसका दर्शन दिलवा दूं तो क्या वो आप देखना छोड़ देंगे.
He said there can be nothing more beautiful than this woman's eyes.
उस आदमी ने कहा कि ये स्त्री के सुंदर आंखों से उससे सुंदर कुछ और हो ही नहीं सकता.
But if you can show me, then that will be very good.
लेकिन अगर आप ये मुझे बतला सकते हैं तो दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा.
This man was a very big, strong man.
ये आदमी जो था बहुत सुदृढ़ था.
His name was Dhanurdas.
उसका नाम धनुर्दास था.
So Ramanuja says, "You come with me tomorrow."
Ramanujacharya ने कहा, आप कल मेरे साथ आइए.
So he came to Ramanujacharya, and he brought him into the Ranganath temple.
वो रामानुजाचार्य के साथ हैं और उनको रंगनाथ मंदिर में लाया गया.
And he brought him before the Lord.
और भगवान के मूर्ति के सामने बिल्कुल लाया गया.
And Ramanujacharya prayed to Lord Ranganath, who is Krishna himself, that please attract. You are the all-attractive one. Please attract this fallen soul's heart.
रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जो स्वयं कृष्ण थे उनसे प्रार्थना की कि आप इसके ऊपर कृपा दृष्टि करें और आप उसको अपनी तरफ उसका आकर्षण करें पैदा करें.
When he saw the eyes of Lord Krishna in the form of this murti, they were so beautiful and so attractive that he fell down and surrendered his life at the lotus feet of Krishna.
जब उस आदमी ने भगवान श्री रंग की आंखों की तरफ देखा तो इतने उससे वो प्रभावित हो गया कि उसने दंडवत किया और पूरा खुद का समर्पण किया.
He said, "I now have no other desire to do anything but see the beauty."
मैं दूसरी कोई आशा नहीं है बल्कि कि मैं श्रीरंगनाथ की सेवा करूं और आपकी सेवा करूं कि आपकी सेवा करने से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो सके.
And he became a great Vaishnava.
और वो बहुत बड़ा वैष्णव हो गया.
And then Ramanujacharya told him one day, "You bring this lady."
और एक दिन रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि वो जो स्त्री थी उसको आप लाइए.
And upon seeing how this man was completely transformed and totally detached from her due to attraction for Krishna, she realized that there's nothing higher than Krishna, and she also surrendered to Krishna.
जब उस स्त्री ने देखा कि ये जो आदमी बिल्कुल उससे उसके जो शरीर का आकर्षण जो था वो बिल्कुल भूलकर पूरी उसकी सेवा जो है सिर्फ भगवान के तरफ हो गई तो उसको भी ये महसूस हो गया कि उसे भी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए.
And Ramanujacharya told them to get married.
रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि आप दोनों विवाह कर लो.
And this man and woman, they performed the samskara of marriage, but together they had no attraction for anything in the world except serving Krishna in union with one another.
इन दोनों ने विवाह का संस्कार तो किया लेकिन उनको सिर्फ भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम था दूसरे अन्य शारीरिक सुख के तरफ नहीं था.
And they became dear, very dear disciples of Ramanujacharya. He gave them so much attention and so much association and so much mercy.
वो रामानुजाचार्य के परम भक्त बने बहुत उनसे उनके प्रति उनका प्रेम था और उनके अच्छे शिष्य बन गए.
And they lived in a nice house and they had reasonable amount of wealth, but they used everything for God's seva.
वो एक अच्छे घर में रहते थे और वो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे.
So the brahmacharis and the sadhus in Ramanuja's brahmacharya ashram, they were talking bad about Dhanurdas and his wife.
लेकिन वो रामानुजाचार्य के घर में जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी और अन्य भक्त थे वो धनुर्दास के बारे में कुछ अच्छा बात नहीं करते थे.
They were saying, "We have renounced home, we have renounced all the luxuries of life, we have renounced association with women, and this Dhanurdas, he has nice house, he has jewelry, he has a beautiful wife, he's a fallen soul."
वो कह रहे थे कि हमने सब कुछ भगवान के लिए त्याग किया है घरदार सब छोड़ा है और धनुर्दास जो है उसके पास अच्छे अच्छे उसके उस अच्छा घर है उसके पास अच्छे आभरण है बस सब कुछ उसके पास है.
And then they started criticizing their own Gurudev.
और उन्होंने उनके गुरुदेव की भी निंदा करनी शुरू कर दी.
They were thinking, we are so renounced and he's living in a house with a wife and all nice things. Why Gurudev gives him so much attention even more than us?
So
Ramanujacharya wanted to enlighten them. Brahmacharis all live together on the floor and they wash their clothes by hand and hang it on ropes.
ब्रह्मचारी सब साथ में रहते थे और अपने जो कपड़े हैं वो धोते थे और एक रज्जू के ऊपर सुखाते थे.
So Ramanujacharya tore little pieces off their copins.
रामानुजाचार्य ने उनके जो कोपिन का कपड़ा था वो फाड़ दिया थोड़ा थोड़ा.
Copin means their little piece of cloth that they wear.
कोपिन का मतलब है छोटा सा फड़का कपड़ा.
So the next morning when they woke up and they took their bath and they went to get their copins, they saw pieces of cloth were torn from their copin.
अगले दिन जब उनका स्नान हुआ तो और जो कपिन पहने के लिए गए तो उन्होंने देखा कपिन में बहुत छेद हैं और फटा हुआ है.
And they all began to chastise each other.
और वो सब एक दूसरे को उनसे कहने लगे.
Why you tore my copin?
क्यों आपने मेरा कपिन फाड़ा है?
No, no, you tore my copin.
And
everyone was just suspicious and fighting. There was a huge commotion in the Brahmacharya ashram. Everyone was fighting because their copins had little torn pieces on it.
सब एक दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने लगे और हर एक यही सोच रहा था कि दूसरे आदमी ने उनका कोपिन फाड़ा है और आश्रम में बहुत गड़बड़ी हो रही थी.
So they kept fighting and fighting about their copins.
लेकिन उनका झगड़ा निरंतर चालू ही था कोपिन के बारे में.
And then Ramanujacharya said, you know this Dhanardas, he's too much attached to material wife and wealth.
तो रामानुजाचार्य उनसे कहने लगे कि ये जो धनुर्दास है वो तो बस उसको भौतिक सुख की बहुत आसक्ति है और उसको उसकी स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति है.
And the Brahmacharya said, yes, yes, correct.
और ब्रह्मचारी लोग कहने लगे सच है.
You understand, Guru Maharaj. Now you understand.
Guru Maharaj, ab aapko jankari ho gayi.
So he said, I want to give a good lesson to just show what attachments he has.
Main unko ek acha sabak sikhana chahta hu ki usko kis tarah ki aasakti hai.
In the middle of the night, I will call Dhanardas to come to see me.
Main raat ko Dhanardas ko bulaunga mujhe milne ko aane ke liye.
At that time, you should go and steal the jewels off his wife's body while she is sleeping.
और उस वक्त आप उनके घर जाइए और धनुदास की जो पत्नी है उसने जो पहने हुए अलंकार हैं वो सब आप निकाल के चोरी करके लाइए.
And we'll see what kind of distress he's in.
देखेंगे हम कि इस तरह से उसको किस प्रकार का दुख हो जाएगा.
So he called Dhanardas, and the wife was laying on her side, and the Brahmacharis very, very quietly they came in the room.
तो उन्होंने धनुर्दास को बुलाया और ब्रह्मचारी जो है उनके घर गए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो है वो सोई है पूरे अलंकार पहने हुए.
Very carefully they started taking all jewels from her.
और बहुत सावधानी से उन्होंने एक एक करके अलंकार निकालना शुरू किया.
And then she started to move.
और जब उसने थोड़ा हिलना शुरू किया.
So the Brahmacharis ran away.
तो ब्रह्मचारी भाग गए.
So then Ramanujacharya said, now I'm sending, then they went back, they brought the jewels to Ramanujam. He said, now you go back and you see when Dhanardas meets his wife, you see how he reacts.
तो आभरण लेके गुरु के पास गए और गुरु ने कहा कि आप अब जाके देखिए कि जब वो धनुर्दास लौट के जाएगा उसके बीवी के पास तो उनमें क्या वार्तालाप होता है.
So the Brahmacharis were looking through like a window very secretly and listening.
तो ब्रह्मचारी जो खिड़की से देख रहे थे और सुनने की प्रयत्न कर रहे थे.
And the wife told Dhanardas that today I think that our Guru Maharaj must have some difficulty. He doesn't have any money.
तो धुरदास की पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि आज शायद हमारे गुरु महाराज के पास कुछ धन नहीं है और उनकी शायद उनको धन की जरूरत है.
Because his brahmacharis came today when I was sleeping and they started taking the jewels off of me.
क्योंकि ये ब्रह्मचारी आज जब मैं सोई थी तब आए और उन्होंने मेरे आभरण जो है निकाले.
So I was thinking, if Guru Maharaj needs our jewels, I should give all. So I tried to turn to the other side so they could take all the other jewels.
तो मैं सोच रही थी कि हमारे गुरु महाराज को शायद धन की जरूरत है तो मेरे पूरे जो आभरण हैं मैं देना चाहती थी और इसलिए मैंने दूसरी ओर मोड़ लिया.
But unfortunately, as I turned, they ran away.
दुर्दैव से जब सोई थी मैं मोड़ा तो वो जो उनके शिष्य हैं सब भाग गए.
So Dhanadas became very angry with his wife.
धनुदास को वो बहुत क्रोधित हो गए.
He said, we had the chance to give everything we had to our Guru Maharaj and because you turned in a wrong way, we lost that opportunity.
तो वो कहने लगे कि आज हमें हमारे गुरु महाराज को सब कुछ समर्पण करने का अच्छा मौका था लेकिन तुम्हारे गलती की वजह से ये सब हमारे हाथ से ये मौका छूट गया.
Everything we have is the property of Krishna and everything we have we want to use it in Guru Seva.
हमारे पास जो भी कुछ संपत्ति है वो सब कृष्णा के और वो गुरु के सेवा में लगाना ही हमारा धर्म है.
We are so unfortunate today that because of your not performing the proper action, you have scared them away and they did not take everything we had. That is our great misfortune.
आज हमारा ये दुर्दैव है कि तुमने कुछ गलती करने से हमारे जो ये हाथ से अच्छा मौका छूट गया पूरा गुरु की सेवा करने की.
So the brahmacharis understood that Dhanadas was a completely pure and selfless soul.
तो ब्रह्मचारी जान गए कि धनुराज जो है वो बिल्कुल उनका स्तर आध्यात्मिक स्तर पे है और उसमें कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं है.
And they returned to Ramanujacharya's ashram and explained what happened.
और वे रामानुजाचार्य के आश्रम पे वापस गए और उन्होंने रामानुजाचार्य को पूरा वृत्तांत बताया.
And Ramanujacharya told them, this morning, when little pieces of cloth were taken from your copans, you were so upset that someone had disturbed your copan.
रामानुजाचार्य ने कहा कि आज सुबह जब आपके कौपिन में से कुछ कपड़ा फट गया था तो आप सब एक दूसरे से झगड़ा करने लगे.
And yet Dhanadas was praising you when you took all of his beautiful jewels. He wanted to give everything.
और धनुरदास जो है उसने आपको पूरे उसके आभरण दिए और वो तो आपकी प्रशंसा करने लगे थे क्योंकि आपने उसके आभरण चुरा लिए.
Who is more detached?
किसकी विरक्ति ज्यादा है?
And all the brahmacharis became very embarrassed.
तो पूरे ब्रह्मचारी जो हैं वो नतमस्तक हो गए.
They understood why Dhanadas was so dear to Ramanujacharya.
उन्होंने ये जान लिया कि धनुरदास क्यों इतने प्रिय हैं उनके गुरु महाराज को.
Because he was truly a surrendered soul.
क्योंकि उसने पूरा समर्पण किया था.
Completely attracted to Krishna.
उनका पूरा कृष्ण के प्रति ही आकर्षण.
And even his wife was so pure and dedicated.
उसकी पत्नी भी इतनी शुद्ध और पूरा surrendered थी.
So whether one is a grihastha or a brahmachari, the important thing is that we learn how to become attracted to Krishna.
अगर कोई ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कृष्णा के प्रति किस तरीके से आकर्षित हों.
Kalavati Devi has requested that we tell this story to reveal to you how in the grihastha ashram, married life, we can achieve the highest perfection, even greater than those of many sannyasis, if we simply live in devotion to God.
इस कहानी में ये बतलाया गया है कि किस तरह कौटुंबिक जीवन में भी हम उच्च स्तर का आध्यात्मिक जीवन कर सकते हैं.
And that comes through associating with devotees.
ये भगवत भक्तों के संग से ही हो सकता है.
Through making your house a temple.
आपका घर का मंदिर बनाने से
through living very pure life, no illicit sex, no intoxication, no gambling, no meat eating.
एक शुद्ध तरह का जीवन जिसमें व्यभिचार और मांस मटन खाना दारू पीना वगैरह न हो.
Following the proper guidance of a true spiritual master.
और गुरु के पूरे मतलब आज्ञा पालन करके.
And always chanting God's name.
और हमेशा भगवान का नाम लेते हुए.
By worshipping the deity, serving the devotees, and chanting the name of God, our heart becomes clean, and our attraction for Krishna becomes so wonderful that we lose all attraction for the sources of misery of this world.
भगवान की अर्चना करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए, हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाता है और इस तरह से हम सेवा में लगे रह सकते हैं.
In this way, we transcend activities of karma. Pious activities. We transcend vikarma or sinful activities and we come to the true state of akarma, activities in devotion to God.
इस तरह से हम हमारे जो कार्य हैं वो विकर्म और सॉरी महाराज विकर्म और didn't get the last sentence. विकर्म धर्म किस तरह से हम ये विकर्म और कर्म के झंझट से दूर निकल के अकर्म की जो अकर्म का जो स्तर रहता है उसको उसके पास जा सकते हैं.
सो वी शुड सेंटर आवर लाइफ अराउंड डिवोशन टू गॉड बाय ऑलवेज कीपिंग हिज नेम इन आवर हार्ट इन आवर माइंड एंड ऑलवेज अपॉन आवर लिप्स.
हम हमारा जीवन का जो ध्येय लक्ष्य है वो पूरा भगवान के प्रति केंद्रित करके हम उसमें जीवन में ला सकते हैं. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
At this time, Vrishabhanu Prabhu will teach you how Lord Chaitanya Mahaprabhu taught us the process of Harinam Sankirtan.
महाराज ने आदेश दिया है कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से कीर्तन किया करते थे उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें.